वीर कुछ क्षणों तक चुपचाप अरमान को देखता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, अरमान भाई, मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं है। आगे बढ़कर उसने अरमान को गले से लगा लिया था और जोर जोर से रो दिया था। वीर को रोते देखकर अरमान ने केवल दो बार उसकी पीठ थपथपाई और कहा था, तुम चाहो तो अपना बिजनेस कल से ही ज्वाइन कर सकते हो और एक बार फिर से अपना काम शुरू कर सकते हो। तुम्हारा जो भी कुछ था वो सब मैं तुम्हें लौटा चुका हूँ। वहीं अब अभिमान जी थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे और हैरानी से नज़र भरकर वसुंधरा को देखने लगे थे। तभी सभी की नज़रें पूरी तरह से वसुंधरा और अभिमान जी पर एक साथ टिक गई थीं। मैं ही आस्था उनके दिल के इमोशंस को अच्छी तरह से समझ रही थी। कुछ तो ऐसा था जिसे दोनों ही खुलकर समझ नहीं पा रहे थे। ठीक उसी वक्त अभिमान जी आगे आए और वसुंधरा को देखकर बोले थे, वसुंधरा, मेरे बेटे ने तुम्हें एक बार फिर से ज़िंदगी दे दी है। अब तुम जाओ और अपनी एक बार फिर से वही ऐश आराम वाली ज़िंदगी जी सकती हो। तुम अब हमारी तरफ से पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम्हें हमारे घर में नौकर बनकर रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही अभिमान जी ने कड़े शब्दों में ये कहा, वसुंधरा खुद को रोक नहीं पाई। वो अचानक अभिमान जी के सामने झुककर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली थी, नहीं, आप मुझे इस तरह से खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़। जैसे ही वसुंधरा ने इस तरह से अपनी माफ़ी मांगनी शुरू की, अभिमान जी ने एकदम सख्त और डार्क चेहरे के साथ उसकी ओर देखा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिमान जी वसुंधरा को बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं थे। वहीं वीर भी अब अभिमान जी को देखकर बोला था, डैड, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और जब से मुझे पता चला है कि आप मेरे पिता हैं, तब से मेरे दिल में आपके लिए अलग ही तरह के जज्बात हैं, एक अलग सी फीलिंग है। मैं भी अब आपके बिना नहीं रह सकता। अब वीर की इस तरह की बातें सुनकर कहीं ना कहीं माहौल एकदम से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया था। फिलहाल दादाजी आगे आए थे, वीर के सिर पर हाथ फेर कर उसे गले से लगा लिया था और बोले थे, बेटा, अरमान ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया। और वैसे भी बेटा, ये तो तुम्हारा परिवार है ही, ये सारा तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारा भाई है, भाभी है, भतीजा है। और देखो, तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हें और भी तो भाई मिले हैं, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, अविनाश, अबीर, ये सब तुम्हारे भाई ही हैं। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ आ सकते हो, ये घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन बेटा, अभी ज़िंदगी के काफ़ी सारे सवालों के जवाब तुम्हें ढूंढने हैं, कामयाबी हासिल करनी है और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, और हम तुम्हें इस चीज़ से महरूम नहीं कर सकते। जैसे ही दादाजी ने अपने अंदाज में वीर को समझाया, कहीं ना कहीं वीर काफ़ी इमोशनल हो गया था। वहीं वसुंधरा ने तुरंत अभिमान जी और दादाजी को देखकर कहा था, मैं जानती हूँ बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अभी तक आप लोगों ने दिल से मुझे माफ़ भी नहीं किया है, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगी। मैं अब यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती और मैं अंश के बिना नहीं रह सकती। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं अपने पोते के बिना भला कैसे रह सकती हूँ। मुझे नहीं पता, इतनी मोहब्बत तो मुझे कभी अरमान या वीर से भी नहीं हुई जितनी मुझे उससे हो गई है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही वसुंधरा ने इस तरह की बातें शुरू की, तभी नानी माँ हल्का सा मुस्कुरा कर बोली थी, बेटा, जानते हो, मूल से ज़्यादा प्यास प्यारा होता है और यही हाल तुम्हारा है। तुम उसकी दादी हो तो मोहब्बत क्यों नहीं होगी। फिर उन्होंने तुरंत अभिमान जी की तरफ देखकर कहा, मुझे तो लगता है एक काम करते हैं, एक बार फिर से अभिमान और वसुंधरा की शादी करवा देते हैं। बताओ क्या ख्याल है बच्चों तुम्हारा। और वैसे भी दामाद जी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे ही नानी माँ ने अचानक इस तरह की बात कही, सब लोग हैरानी से उनका मुंह देखने लगे थे। वहीं वसुंधरा का चेहरा अपने आप ही लाल हो गया था। वो खुद को रोक नहीं पाई और जाकर नानी माँ को गले से लगा लिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मांगी हुई मुराद पूरी हो गई हो। वहीं अब अभिमान जी थोड़ा सा हैरानी से इधर उधर देखने लगे थे। नानी माँ की बातों ने उन्हें सच में गहरे सोच में डाल दिया था और वो बोले थे, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ज़रूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या पिताजी, क्या नहीं हो सकता? क्या आपको वसुंधरा आंटी पसंद नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं, आपके लिए कोई और ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आस्था ने शरारत से अचानक ये कहा, अब तो अभिमान जी जल्दी से बोले थे, नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन इस बीच अरमान का चेहरा पूरी तरह से शांत जरूर था, मगर ध्यान से देखने पर उसकी आंखों में दबे हुए जज्बात साफ छलक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हो। वो एक तरफ बैठकर अपना काम निपटा रहा था और उसके लैपटॉप पर उंगलियां लगातार फटाफट चल रही थीं, न केवल चल रही थीं बल्कि मानो दौड़ रही हों। लेकिन बीच बीच में उसकी उंगलियां हल्की सी रुक जाती और उसकी नज़र अनायास ही आस्था की ओर उठ जाती। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द, उलझन और गुस्से की हल्की सी झलक दिखाई देती, जिसे वो अगले ही पल फिर से अपने काम में खोकर छिपा लेता। वहीं आस्था की बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिल और दिमाग में गहरी हलचल पैदा कर दी थी और सभी को आइडिया मिल गया हो वसुंधरा और अभिमान को एक करने का। फिलहाल अबीर सिंह राठौर थोड़ी देर तक हैरानी से आस्था को अपनी आंखों में बसाने के बाद अरमान को देखने लगा था। अंदर ही अंदर उसकी एक अलग तरह की खिचड़ी पक रही थी। फिलहाल अबीर अविनाश के पास जाकर बोला था, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तब तक यहाँ था जब तक अरमान की यादें वापस नहीं आ जाती। मुझे लगता है कि अब यहाँ सब कुछ काफी हद तक ठीक हो चुका है और यहाँ पर अब किसी को मेरी खास जरूरत भी नहीं है। कहीं न कहीं, ये कहते हुए अबीर के चेहरे पर एक अलग ही तरह का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ये सुनते ही अविनाश तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतने कम समय में ही तुम इस परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। तुम्हें इस तरह की बातें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे भाई जैसे हो। जैसे ही अविनाश ने अबीर को इतना मान सम्मान दिया, कहीं न कहीं अबीर की आंखों में भी हल्की सी खुशी छलकने लगी थी और वो भावुक होकर अविनाश को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरमान तिरछी नजरों से अबीर और अविनाश को ही देख रहा था। भले ही वे उससे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, लेकिन अरमान की नजरें पूरे हॉल पर फैली हुई थी और उसका ध्यान हर छोटी बड़ी बात पर था। फिलहाल अबीर ने अविनाश को देखते हुए कहा, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भला ज्यादा दिन इस तरह यहाँ कैसे रह सकता हूँ? और वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ अरमान, उसे कभी भी ये पसंद नहीं आएगा कि मैं यहाँ उसके परिवार के साथ रहूँ। और फिलहाल तो मुझे भी अब तैयारी करनी होगी। न जाने वो राजवीर जिंदल कब और कहाँ से वार करते, इसके लिए मुझे पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और वैसे भी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ आस्था को खुश देखना।
आपने खुद देखा है, जब से उसके पति की यादें वापस आई हैं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी लौट आई है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे कितना अच्छा महसूस होता है। ये कहते हुए अबीर एक बार फिर आस्था की ओर देखने लगा था। वहीं अरमान अब लाल आंखों से अबीर को घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की हल्की सी झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपने इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। आखिरकार वो इस तरीके से अबीर से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पूरा परिवार अभी अबीर को एक मेहमान और सम्मानित इंसान की तरह देख रहा था। इसलिए अरमान ने जैसे तैसे अपने इमोशंस पर काबू पाया और तुरंत अपने सामने रखी फाइल में पड़े हुए कुछ कागजों को उठाकर उन्हें पलटने लगा, मानो वो खुद को काम में व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं अविनाश जल्दी से बोला, भले ही अब आस्था की मुस्कुराहट वापस लौट आई हो, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि अभी राजवीर का खतरा पूरे परिवार पर उसी तरह से बरकरार है और हम सबको मिलकर ही उसका सामना करना होगा। ये सुनकर अबीर ने गहरी नजरों से अविनाश को देखा और बोला, आप उसकी फिक्र मत करें। रही बात राजवीर की, तो अब मैं उससे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और उसे अच्छा खासा सबक सिखाकर ही रहूँगा। ये बोलकर अबीर ने अविनाश से विदा ली और वहां से जाने लगा था, क्योंकि उसे वहां थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि पूरी फैमिली फिर से एक हो गई है, लेकिन वो खुद को अलग सा महसूस कर रहा था। लेकिन तभी अरमान की दमदार आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस्टर राठौड़, आप कहाँ जा रहे हैं? अबीर के कदम जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे तुरंत रुक गए। वो हैरानी भरी नजरों से अरमान को देखने लगा। अरमान की आवाज सुनते ही बाकी सब लोग भी चुप हो गए, जो अभी तक आपस में खड़े होकर वसुंधरा और अभिमान जी के बारे में बातें कर रहे थे। वे भी एक साथ मुड़कर अरमान और अबीर की ओर देखने लगे थे। कहीं ना कहीं आस्था के मन में भी हल्का सा डर बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने अरमान अब अबीर को देखकर क्या कहेगा। उसे ये भी डर था कि कहीं अरमान गुस्से में आकर उसे कोई उल्टी सीधी बात ना सुना दे। आखिरकार अरमान की यादें अब पूरी तरह से लौट आई थीं और वो अबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये बात ना तो आस्था से छुपी थी और ना ही परिवार के किसी और सदस्य से, इसलिए उस पल कमरे का माहौल अचानक से थोड़ा भारी और तनाव भरा हो गया था और हर कोई चुपचाप अरमान की अगली बात सुनने का इंतजार करने लगा। तभी अरमान ने अबीर की तरफ देखकर कहा था, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, तो बदले में आप अपना गिफ्ट और सामान तो लेकर जाइए। ये सुनकर अबीर हैरानी से भर गया और बोला, गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? और वैसे भी मेरा कौन सा सामान है तुम्हारे पास अरमान? तभी अरमान सीधा अबीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने अबीर की वो सारी प्रॉपर्टी जो राजवीर जिंदल ने धोखे से हड़प ली थी, उसके असली कागजों के साथ वापस अबीर के हाथों में थमा दी। अपनी प्रॉपर्टी के कागज देखकर अबीर दंग रह गया और बोला, लेकिन तुमने ये सब कुछ राजवीर से कैसे हासिल किया? तभी अरमान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो तुम्हारा सोचने का काम नहीं है। अबीर अभी भी हैरानी में था, लेकिन तभी आगे बढ़कर अरमान ने उसे गले से लगा लिया। ये दृश्य देखकर हॉल में मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। अरमान ने अबीर के कानों में धीरे से कहा, मेरी बीवी से दूर रहना। खबरदार अगर तुमने उसे बटरफ्लाई बोलने की कोशिश की तो। इस घर में आ सकते हो, लेकिन मेरी बीवी से दूरी बनाकर रखना। जैसे ही अरमान ने गहरे अंदाज में ये कहा, अबीर के हाथों में हल्की सी ठंडक दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो हल्की सी मुस्कान के साथ अरमान के कानों में बोला, क्या तुम्हें अभी भी डर है कि तुम्हारी बीवी कहीं तुम्हें छोड़कर मेरे हैंडसम चेहरे पर न मर मिटे या मेरे चाम के चक्कर में आ जाए? इसीलिए तो तुमने मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस की है ताकि मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर, जब तक मुझे लगेगा कि मेरा कोई चांस है, मैं तुम्हारी बीवी पर लाइन मारना नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर अबीर मुस्कुराते हुए तुरंत हॉल से बाहर चला गया। वहीं आस्था हैरानी से अरमान के एक्सप्रेशन देख रही थी। वो सोच रही थी कि इस वक्त उन दोनों के बीच आखिर क्या बातें हुई होंगी। तभी नानी माँ कुछ कहने ही वाली थीं कि अचानक लैब रूम की तरफ से प्रियंका की चीखने की आवाजें आने लगी। जैसे ही ये आवाज गूंजी, सबके होश उड़ गए। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन बातों में इतने मग्न थे कि किसी ने समय का ध्यान ही नहीं दिया। वंशिका ने जल्दी से अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ शिट, इन सब बातों में पहले ही 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। प्रियंका को इंजेक्शन दिए हुए भी काफी समय हो गया है। हमें तुरंत जाकर देखना चाहिए, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। ये सोचकर सब लोग फटाफट लैब रूम में पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। प्रियंका पूरी तरह से कांप रही थी और बेहद अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इस तरह की बातें सुनकर प्रियंका पूरी तरह से हिस्टेरिकल हो चुकी थी। नानी माँ की आंखें ये सब देखकर भर आई थी। हॉल का माहौल, जो कुछ देर पहले तक हल्का और खुशियों से भरा था, अब एक बार फिर भारी और डरावना हो चुका था।